known by a nickname by which she approves its meaning. She doesn't mind when you call her by that name, and she doesn't get upset if this allowed in your song. You call each other by nicknames. You have to call each other by that name which the other person likes for them to be called. Okay? So, if there is any other nickname or alqab you're going to give to each other, it should be those that you should ask the other individual, what is the name that you would like me to call you? Now, if the other individual is saying that you can call me, for example, a parrot, which actually, if you think about it, like, you know, if your name is Muhammad or Hassan or Ali or Jafar and so forth, such beautiful names, you should feel a little bit inside not to tell this to the other guy to call you a parrot. You should just say that I would like to be called Hassan or Muhammad or Jafar. Okay, first of all, nicknames is part of this culture where they try to, they just don't have very good names like Peter, John, Smith, Jason, Chris. I mean, if you think about these names, also have a biblical connection. All of these names, they have a biblical connection, but because now they have lost their connection with the Bible, so they would rather be called, dog or, you know, all these other nicknames that they come up with. The Muslim should not go on this nahj, on this way. If your mom is okay with that, and it's not really toheen ya koi aisa cheez nahi hai, and she's alright with it, but the thing is that if you keep calling her that, and when you are in the public, you call her by that nickname, the other people looking at you are going to look at you as a person who disrespects their mother, and the other daughters or sisters might think of it as it is okay to call their mothers with nicknames. So I would suggest that you don't do that.
Sir?
Yeah.
ये वो छुट्टियों में ना बच्चे जॉब ढूंढ रहे होते हैं ना वेकेशन में सम्मान अगर कोई ये जॉब पकड़े रमजान के महीने में ट्रैवलिंग का और फिर उसके रोजे इसमें जाते हो उसके हवाले से
ट्रैवलिंग इज ओके अगर वो जॉब के हवाले से उनके ट्रैवलिंग इज पार्ट ऑफ देयर जॉब
तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द जॉब जस्ट ही इज नॉट अ
ही इज
ऑप्टेड दिस जॉब
या ही इज ऑप्टेड फॉर दैट मंथ राइट
या
सो ही इज गोइंग टू बी पासिंग ड्यूरिंग दैट मंथ
He has to pass.
Job ka ye hota hai ki if you have become a person who, for example, you start driving a truck. So you are driving a truck all the time. So because you're driving a truck all the time, that doesn't give you the excuse not to pass.
Okay.
If once in 10 days someone is traveling, for example, okay? If once in 10 days and it is regular that they are doing this, for that day that they're traveling, they have to fast.
Regardless of the distance.
Regardless of the distance. I can go to, for example, I can go to... Mugenda Lake. Distance I want to go really far, like China, but I realize it's 14 hours going and 14 hours coming back. Yeah. What is Ru? What is the true meaning of it? What is Ruh? What is the true meaning of it? Okay, very quickly. Ruh means essence, reality, truth. What it is a creation of Allah subhanahu wa ta'ala, which has the potential to acquire the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala without any limits as compared to the other creations. It has the ability to acquire the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala without any limits depending, like in creation without any limits. But if you compare it with Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala has no limits. But in creation, ruh has no limits. Meaning, it can acquire those qualities and go to its highest levels that any creation can. That includes jinn as well. And this ruh is everywhere and nowhere. Does not have a shape or form. It is above time and space. It is immortal. It does not die. It has the ability to overpower this whole universe and do whatever it wishes anywhere, any place, without any time restrictions. You with me? For example, if my soul wishes to move a stone in Mars right now, it can. If it wishes to move a stone in Pluto right now, it can. If it wishes, if it wants to, for example, go through a black hole in this galaxy and come back, it can. The whole matter in front of the soul is smaller than a speck of dirt in front of you. It's the most beautiful thing that Allah subhanahu wa ta'ala has created. That is, when He says that I put my soul in Him, I put my soul in Him. Yani, this soul that Allah subhanahu wa ta'ala has created is so great. It's so, yani, it has so much. If you start looking at it very closely, you will see that it resembles a lot of the powers and abilities that what? Allah subhanahu wa ta'ala has. So that to that one point He said that it is my soul that I'm putting inside of it. Now that power, all of that intense power that we have inside, what do we use it for? To make $60,000 a year, retire at 65, and then go and live somewhere in a villa. Any? Imagine having the power of all the superheroes, like the Hulk and, you know, Superman and Thor and Spider-Man and you know, X-Men and any, every single superhero that human imagination has ever thought of, or any power that that superhuman being can have. Imagine having that inside of a person, like for example myself. And what do? With all of this power that I have inside, what do? I just earn $60,000, I don't even earn that, but for example, I live a life of 65, retire, and then that's it, die. What would you say to that person? Like, what's wrong with you? You have so much power inside, you can do so much. So why are you settling for so little? Right? And basically, this is what most of the human beings are doing in this world. So, what is ruh? You can talk a lot more about it, like I'm sure you might have a lot more questions after my explanation. If you want, we can answer those. Is it wajib for all year, for 11-year-old to fast? Is it wajib? If it's a sister of ours, most likely she is baligh and she should be fasting. 11-year-old brother? 11-year-old brother, I would have to speak with. 11-year-old brother, I have to talk to them to see if they, because it's not necessarily always the age. It is when you have those signs of puberty come on your body that you become bali. So it depends. But in precaution, if you don't want to talk to me and you just want to stay anonymous, In precaution, I would say that you should stop fasting. Every single fast. Your question? Someone's writing up the question.
क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी आज जो हमने डिस्कस किया कि वाजिबात को तर्क करना जो है वो गुनाह कबीरा है, तो अब अगर कोई वाजिब जो है किसी वजह के तहत जो है वो तर्क हो जाती है, फॉर एग्जांपल एक नमाज है और आदमी जो है वो सो रहा है, जोहर की नमाज है या सुबह की नमाज है, और वो जो है वो जाग नहीं सका उस टाइम और वो तर्क हो गई, तो उस सूरत में जो है वो क्या ज़ाहिर है वो कज़ा तो है लेकिन
कफ़ारा।
हाँ जी, जब वो सोने लगा है साहब तो अब वो उसे पता है कि अगर मैं सो रहा हूँ तो मेरी नमाज जो है वो मिस हो जाएगी। उसने कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप लेटे हैं 15-20 मिनट हैं जोर की नमाज में और आप लेट गए हैं, तो जैसे आप लेटे आपको पता है कि जोर की नमाज मिस हो जाएगी, तो फिर लेटे ना। अब जो लेटे हैं तो ये जानबूझ के लेटे हैं कि पता है कि जोर की नमाज कज़ा हो जाएगी लेकिन फिर भी लेट गए, तो कोई ऐसी कभी एक्सक्यूज नहीं होती कि आप किसी वाजिब अमल को जब तय करना। अगर तो इंसान वाकई कोई मुकसर है, यानी फॉर एग्जाम्पल इस्तेदात की जरूरत है हज के अंदर, अगर आपके पास इस्तेदात पूरी जिंदगी नहीं आती तो ठीक है आपके ऊपर हज वाजिब नहीं है, यानी अब आपने उसको नहीं किया तो उसके अंदर कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर इस्तेदात कभी भी आपकी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी आ गई थी तो वो आपके ऊपर वाजिब हो गया था, और आप अगर नहीं गए तो अब इस्तेदात की शर्त ख़त्म हो गई है। अब ये नहीं है कि आप इंतज़ार करेंगे दोबारा इस्तेदात आएगी, नहीं, अगर थी एक वक्त में और आपने कि आपने वाजिब को तर्क किया, आप कर्जा भी लेना पड़े, किसी से लोन भी लेना पड़े, जो भी करना पड़े आपको हज पे जाना है, और अगर उस हालत में मर गए तो फरिश्ते जो हैं ये कहेंगे कि तुम बताओ, जब वो शख्स मरेगा ना तो कहेंगे तुम बताओ तुम क्रिश्चियनिटी पे मरना चाहते हो या हिंदू या ये जूडिज्म पे मरना चाहते हो, तुम बताओ तुम किस दीन पे मरना चाहते हो। वो जो मरने वाला होगा वो कहेगा यार मैं तो मुसलमान था जिंदगी में, अगर तुमने आमदन जो है वो हज को तर्क किया तो तुम मुसलमान अब मर नहीं सकते, तुम या तो क्रिश्चियन मरोगे या तुम जू मरोगे, डिसाइड तुम कर लो। नहीं भेजते The question is, I was wondering that if you are going on Highway 401 and there are cars going 130 km/h, 140, to follow the flow of the traffic, is it alright if you go same speed with them, like with flow? I'm not saying that all cars are going 100 km/h and you should go at 140. Okay, now if you're asking me like to Islamify speeding for you, I don't know. I don't know the answer to that. You should ask a cop. A police officer probably would be the best person to tell you. बलूक की जो एज है वो तो यानी हर कल्चर में मुख्तलिफ होता है, कोई किसी कल्चर में जो है लड़कियाँ 9 से पहले या 9 के करीब जो है बालिग हो जाती हैं, किसी कल्चर में जो है वो यानी उनके जिस्म के ऊपर डिपेंड करता है, तो असल में जो बलूक के हैं वो आसार हैं जिसम के ऊपर, जब आसार नजर आए तो शब्द बालिग है, उसमें एज का कोई मुश्किल नहीं, एज की कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, अब ये बच्चों को बताने के लिए कि भाई वो एज में आपको जिम्मेदारी जो आ जाती है कि खुदा आपको क्या समझता है, इस तरह से ये असल में इसकी जो जरूरत है माँ बाप को है ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा, क्योंकि माँ बाप को ये बात पता होनी चाहिए कि जो बच्चा है जब वो बालिग हो जाएगा तो उसके ऊपर जो तकलीफ आने वाली है, जो जिम्मेदारी आने वाली है, उसके लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस तकलीफ से पहले इसको हम तैयार करें। سمجھیں, یعنی اس شخص کو جو بالغ ہونے والا ہے اس کو پورے رسالے کے احکام آنے چاہیے, جو مبتلا ہوں وہ احکام آنے چاہیے. اس شخص کو جو ہے وہ قرآن پڑھنا حتیٰ اس کی تفسیر بھی جو ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, اخلاق کے تمام صفات حسنہ اور رزیلہ کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے, اصول دین کے اندر دلائل کے ساتھ توحید نبوت امامت قیامت عدل الہی اور یہ سب چیزیں اس کو پتہ ہونا چاہیے. یعنی جب سے اس سے پہلے کہ یہ بلوغ کی ایج تک پہنچے اور یہ تکلیف اس کے سر پر آئے, یہ ساری چیزیں ماں باپ کو اس بچے کے لیے کرنی پڑتی ہیں. اور کوئی ماں بھی جو ہے وہ فل ٹائم مثلا یہ کہ کام کر کے اس کام کو نہیں کر سکتی. یعنی جو ماں کا کہا گیا کہ تربیت کے حوالے سے اس کو گھر میں رہے کہ بچوں کی تربیت کرنا چاہیے, وہ اس وجہ سے پارٹ ٹائم مدر بن کے کوئی کسی کی کوئی امام کا سپاہی اور لشکر کے وہ نہیں بندے پیدا کر سکتے. پارٹ ٹائم مدر کین ڈو اٹ. اور یہ جو مشکل ہے یہ ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہے کہ بالغ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو 9 سال کا 10 سال کا 12 سال کا 14 سال کا ہونے لگا ہے اس کے اوپر جو ذمہ داری آنے والی ہے, اگر یہ رات کو بالغ ہوا ہے اور صبح کو اس کے اوپر واجب ہے روزہ رکھنا, اگر اس کو صبح جو ہوتی ہے پتا نہ ہو کہ روزہ کے کیا احکام ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے, ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اسے پتا نہ ہو کہ جنابت کی حالت میں جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ سویا رہے تو وہ اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ہوتا, اس کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو بالغ ہونے سے پہلے یہ سب کام بتا دیں. اور یہ واقعی یعنی 8 آور اسٹوڈنٹ کی طرح ہے, 4-5 آور گھنٹے کے دن کے 4-5 آور ماں کو جو ہے اسپینڈ کرنے پڑیں گے کہ وہ ان ساری چیزوں کو بچے کو بتا سکے. ٹھیک ہے پھر ان شاء اللہ 8-13 بھی آج نماز تھی تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, آپ کے گناہوں کو خدا معاف کرے, گناہوں کے ذمہ کرے سب ہمارے